समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान -5।
लंका और भारत की एकता।
पुराणों में रावण की स्वर्ण विनिर्मित लंका का विस्तार पूर्वक वर्णन आता है।
वाल्मीकि और तुलसीकृत रामायण में सीताहरण और राम रावण युद्ध की चर्चा करते हुए बहुत कुछ लिखा गया है। रावण का कैलाश पर्वत पर जाकर तप करना, सीता स्वयंवर में पहुंचना लिखा है।
मध्य भारत के दंडकारण्य क्षेत्र तक उसका राज्य फैला था। खरदूषण उसके राज्यपाल थे। रावण की बहन सुपनखा वहां की साम्राज्ञी थी।
इन वर्णनों से विदित होता है कि पौराणिक काल में लंका बृहत्तर भारत का एक प्रदेश माना जाता था। अंग्रेजी शासन काल में भी लंका और भारत एक थे। बिखराव की आंधी ने लंका को भी भारत के अंचल से छुड़ाकर अलग थलग पटक दिया, तो भी सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश अभी भी एक प्रकार से भारत ही है। श्रीलंका के इतिहास में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन है कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व उत्तर भारत से पहुंचे भारतीयों ने इस द्वीप को बसाया था और उसका नाम सिंगल द्वीप रखा था।
वहां के वंश नामक इतिहास ग्रंथ में इस घटनाक्रम का वर्णन है, जिसके अनुसार भारतीय वहां जाकर बसे और कृषि व्यवसाय और शासन व्यवस्था की नींव रखी। तब से लंका में पिछले दिनों तक के राजतंत्र चलाने वाले विद्वान धर्मगुरु तथा व्यवसायी भारतीय वंशधर ही रहे हैं।
दक्षिणी भारत तट से लंका समीप पड़ने के कारण पीछे वहां के लोगों का आवागमन अधिक रहा और वे ही बहुसंख्या में वहां बसते रहे।
बौद्ध धर्म के प्रवेश के पूर्व लंका में हिंदू धर्म का प्रचलन था। 7वीं सदी में देयुंदर में वहां विष्णु मंदिर विनिर्मित हुआ था।
नागों और यक्षों का भी उन दिनों प्रचलन था। अनुराधापुर के आसपास अनेकों हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं।
त्रिकोणमल्ल, मांतई एवं मुन्नीश्वरम के शिव मंदिर किसी समय बहुत समुन्नत स्थिति में थे। दक्षिण भारत के अंतिम छोर से 50 मील दूर लंका द्वीप है। किसी समय वह भारत का ही अविच्छिन्न अंग था।
प्रकृति के परिवर्तन ने एक जल की पट्टी बीच में बहा दी और वह भूगोल की दृष्टि से अलग हो गया।
रामेश्वरम से लेकर लंका तक का समुद्र बहुत उथला है।
उसमें रेतीली प्राचीर और प्रवाल पर्वतमाला बिखरी पड़ी है।
इस उथली जलमग्न भूमि को सेतुबंध की संज्ञा दी जाती है। संभव है जब पानी ने कटाव आरंभ किया हो तब उस पर बांध बांधने का कोई प्रयत्न किया गया हो और नल नील इंजीनियरों ने उसके निर्माण की भूमिका निभाई हो। लंका की अधिकतम लंबाई 270 मील, चौड़ाई 137 मील और क्षेत्रफल 25,332 वर्ग मील अर्थात भारत का 60वां भाग है।
आबादी 1 करोड़ से भी कम है।
इनमें बौद्ध 61%, हिंदू 21%, मुसलमान 1% और ईसाई 10% हैं।
जातियों की दृष्टि से इन्हें यूरोपीय डच, यूरेशियन, सिंगली, तमिल, मूर मुसलमान, मलाय और वेदा आदिवासी कह सकते हैं। सिंगली 67%, तमिल 24, मूर मुसलमान 7% हैं, शेष में अन्य सभी जातियां शामिल हैं। भारत की तरह यहां भी आदिवासियों की बड़ी संख्या जंगलों में लंगोटी पहने शिकार पर गुजारा करती है। इन लोगों को हंसना नहीं आता। यहां के पर्वतों के शिखर 8,000 फीट तक ऊंचे हैं। सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा है जो 206 मील बहती है। इस देश का बहुत बड़ा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा है। उष्णकटिबंध होने से यहाँ स्वभावतः गर्मी अधिक पड़ती है, पर चारों तरफ समुद्र होने से तापमान उतना अधिक नहीं होने पाता।
यहाँ लगभग 70% व्यक्ति सिंगली बोलने वाले और 20% तमिल वाले हैं। राज्य भाषा सिंगली है, वैकल्पिक मान्यता तमिल को भी मिली हुई है। तमिल भाषाओं में आधे तो लंका निवासी ही हैं।
आधे भारतीय मूल के लोग हैं। भारतीय क्रमशः 100 वर्षों से वहां जाकर बसते रहे हैं।
इसके पूर्व 6वीं शताब्दी में श्रीलंका का इतिहास उपलब्ध है। उसे भारतीय राजकुमार विजय ने विधिवत बसाया।
इसके बारे में किंवदंती है कि उसका बाबा सिंह की संतान था। सिंह की संतान होने के कारण उस देश का प्राचीन नाम सिंगल पड़ा और वहां के निवासी सिंगली कहलाए। वन्य पशु सिंह से मनुष्य की उत्पत्ति की लोक गाथा में इतना ही तथ्य हो सकता है कि उन्हें सिंह गोत्रीय क्षत्रियों के वंशज माना जाए।
सम्राट अशोक की प्रेरणा से तत्कालीन लंका के राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों ही उस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए थे और वहीं वे अंतिम समय तक बने रहे। सन 15 में यहां की राजधानी अनुराधापुर थी और शासन तमिल भाषी हिंदू राजा करते थे। अशोक के चतुर्थ शिलालेख में धर्म विजय अभियान के ताम्रपर्णी लंका में सफलतापूर्वक प्रवेश का उल्लेख है।
अशोक का पुत्र स्वयं प्रचारक बनकर उस देश में गया था।
इससे 145 वर्ष पूर्व लंका का शासक देवानाम प्रियतिष्यत था। उसने इस धर्म विजय में भरपूर सहायता की। तिष्य ने महाअरिष्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के साथ धर्म चर्चा करने को भेजा। अशोक ने इस प्रतिनिधि मंडल का समुचित स्वागत किया और उसे बहुमूल्य उपहारों के साथ लौटाया।
साथ ही एक पत्र भी लिखा कि मैं बुद्ध की धर्म की संत की शरण में आ गया हूँ। ए मनुष्यों के शासक, तुम भी इन तीनों रत्नों को ग्रहण करके अपने को धन्य बनाओ।
तदुपरांत अशोक पुत्र महेंद्र अपने साथ इष्टिय, शुंबल, उक्तिय, भद्रशाल तथा भिंदु जैसे विशिष्ट प्रचारकों के साथ लंका गया और उनके प्रयत्न से राजा तिष्य ने 40,000 प्रजाजनों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। उसी अवसर पर राजधानी अनुराधापुर में एक विशाल चैत्य की स्थापना हुई। उसका नाम महाविहार रखा गया।
अब उसे दागोवा कहते हैं।
महेंद्र के उपदेशों से राज परिवार की महिलाएं बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अशोक की पुत्री संघमित्रा से दीक्षा ग्रहण की। फिर तो महिला समाज में बुद्ध धर्म फैलने लगा गया। संघमित्रा महेंद्र के बाद ही भारत से बोधि वृक्ष की शाखा लेकर लंका पहुंची थी।
इस शाखा को वहां बड़ी धूमधाम से लगाया गया।
संसार का सबसे पुराना यह ऐतिहासिक वृक्ष अनुराधापुर में जय महाबोधि के नाम से अवस्थित है।
उसका दर्शन करने बौद्ध देशों से हजारों यात्री प्रति वर्ष पहुंचते रहते हैं।
संघमित्रा का एक अलग उपासिका विहार बना। राजकुमारी अतुला सहित 500 भिक्षुनियां उसमें निवास करने लगीं और उस देश में धर्म विजय के लिए अनवरत प्रयत्न करने लगीं। 20 वर्ष की आयु में राजकुमार महेंद्र ने ईसा से 259 वर्ष पूर्व संन्यास ले लिया था। आचारी मोगली पुत्री तिस्य मोगली ने अशोक के संग को पत्र दान देकर अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी थी। अशोक ने केवल अपना ज्येष्ठ पुत्र वरन, उसकी बहन संघमित्रा को भी धर्म विजय अभियान के लिए दान कर दिया। लंका में जो बौद्ध प्रभाव पड़ा उसका श्रेय अशोक के इस संतान दान को दिया जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। महेंद्र ने ईसा से 252 वर्ष पूर्व अर्थात संन्यास लेने के 7 वर्ष उपरांत एक अंतर्राष्ट्रीय विशाल बौद्ध धर्म सम्मेलन बुलाया, जिसे तृतीय संगीत कहा जाता है। उस योजना के अनुसार लंका न केवल स्वयं बौद्ध धर्म का सुदृढ़ गढ़ बना, वरन उसने वर्मा, कंबोडिया, सियाम, लाओस आदि सुदूर पूर्व के देशों और क्षेत्रों में धर्म विजय के लिए उत्साहपूर्ण पूर्वक प्रयास किया।
संघमित्रा और महेंद्र के अवसान के उपरांत कुछ समय ऐसा भी रहा है जब लंका में राज्य क्रांतियां होती रही और उनके भले बुरे प्रभाव धर्म विजय अभियान पर भी पड़ते रहे।
सुवर्णपिंड, तिष्यसेन, गुतिक, अलार, दुष्टग्रामणी आदि के शासन आए गए। उनमें से कई बौद्ध धर्म के प्रति उदार भी रहे। अलार ने 15,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर एक स्तूप का पुनरुद्धार कराया। दुष्टग्रामणी ने विशालकाय, रत्नमालय स्तूप बनवाया और दक्षिणगिरी लंका, कुलन्याल, विलंग, बीथी दुर्बल, वापितिष्य, दूरतिष्य, कवापी, अभयगिरी, दीर्घवापी आदि अनेक विहार बनवाए तथा तत्कालीन प्राचीन विहारों को बहुमूल्य सुविधा साधन प्रदान किए। इसके उपरांत राजा महासेन द्वारा मनिहार, गोकर्ण, इक्काबिल और कलंद विहारों का निर्माण कराया गया। उसने एक नहर खुदवाई और 16 सरोवर बनवाए। इसके उपरांत राजा मेघवर्ण ने लोह प्रासाद का पुनरुद्धार किया। धर्म प्रचारक महेंद्र की स्वर्ण मूर्ति बनाकर स्थविराम मंदिर में स्थापित कराई। उसने भारत से भगवान बुद्ध के अवशेष मंगाए। तथागत का दांत स्वर्ण पात्र में लेकर कलिंग के राजकुमार लंका पहुंचे। उस अवशेष का भारी स्वागत हुआ। उसे कांडी में मालिगांव मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। मेघवर्ण ने 18 विहार बनाए।
उन दिनों महापंडित बुद्ध घोष के नेतृत्व में प्रजा के मन पर बौद्ध धर्म की गहरी छाप पड़ी और प्रबुद्ध लंका वासियों ने उत्साहपूर्वक उसमें प्रवेश किया।
उसने अर्थासालिनी, ज्ञानोदय, विशुद्धि मग्ग नामक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की और अपने साथी केवल की सहायता से त्रिपिटक का लंका की भाषा में अनुवाद किया।
इस लेखन प्रयोजन के लिए एक ग्रंथकार विहार अलग से ही बनाया गया। पटकथाओं का अनुवाद इसी केंद्र से किया गया।
11वीं शताब्दी में विजयबाहु और 12वीं शताब्दी में पराक्रमबाहु ने बौद्ध धर्म में आई विकृतियों का निराकरण करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार प्रयत्न किए। रत्नमालय के दक्षिण पश्चिम में अभयवापी विश्वकुलम के निकट मिरिस बट्टी स्तूप है।
समीप ही तिशवापी है। ईसुर मुनिया से थोड़ी दूर बेसगिरी की पहाड़ी पर बहुत सी गुफाएं हैं, उनमें ब्राह्मी लिपि के लेख खुदे हैं। इस क्षेत्र में संघारामों के अनेक ध्वंसावशेष बिखरे पड़े हैं।
अनुराधापुर के समीपवर्ती क्षेत्र में जेतवनाराम का महास्तूप दर्शनीय है।
कुडापोकुंड के पक्के कुंड भिक्षुओं के स्नान के लिए बनाए गए थे।
फाहियान के अनुसार अभयगिरी के महाविहार में 3,000 भिक्षु रहते थे, मलबत विहार में अभी भी 300 भिक्षु रहते हैं।
बौद्ध धर्म के लंका में कितने ही दर्शनीय स्थान हैं।
कोलंबो से 8 मील दूर कल्याणी विहार सन 203 में विनिर्मित हुआ था, उसे राजा देवनाम प्रियतिष्य ने बनवाया था।
समंतकूट के बुद्धपाद में भगवान बुद्ध के चरण की स्थापना है। ईसाई और मुसलमान इसे हजरत आदम के चरण बताते हैं।
उनके अनुसार आदम ने सबसे पहले पृथ्वी पर इसी जगह पैर रखा था।
अनुराधापुर का विहार सबसे बड़ा है, वह 8 मील के घेरे में है।
राजकुमार महेंद्र यहाँ ज्येष्ठ की पूर्णिमा को पहुँचे थे।
उस दिन यहाँ उनकी स्मृति में भारी मेला लगता है जिसमें लाखों धर्म प्रेमी सम्मिलित आते हैं। मेले के अतिरिक्त घरों में भी उस दिन त्योहार मनाया जाता है।
लंका का दूसरा पर्व है भगवान बुद्ध का जन्म दिवस वैसाख पूर्णिमा।
इस दिन प्रायः सभी बौद्ध देवालयों और घरों में उत्सव होता है।
कांडी सैखंड के विहार में भगवान बुद्ध का पवित्र दांत स्थापित है। इसके दर्शन आषाढ़ी पूर्णिमा को होते हैं।
स्वर्ण पात्र में रखकर उसे हाथी की पवित्र सवारी पर जुलूस के रूप में घुमाया जाता है ताकि धर्म प्रेमी उसके दर्शन कर सकें।
इस दांत की सुरक्षा का ध्यान लंका निवासी बड़ी सतर्कता पूर्वक करते हैं।
स्थापन मंदिर में 3 ताले लगे रहते हैं,
एक चाबी सीलोन के गवर्नर के पास, दूसरी धर्माध्यक्ष के पास और तीसरी एक अन्य संभ्रांत व्यक्ति के पास रहती है ताकि कोई उसे चुरा न सके।
इस मंदिर की दीवारों पर नरक के 15 चित्र बने हैं जिनमें दुष्कर्म करने वालों को परलोक में मिलने वाले दंडों का चित्रण किया गया है।
ईसा से 150 वर्ष पूर्व बना हुआ बुद्ध स्तूप रोवन बलिसेवा यहाँ की महत्वपूर्ण प्राचीन इमारत है। इसी प्रकार पर्वत शिला काटकर बनाई गई विशालकाय बौद्ध प्रतिमा भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र है। कांडी में भगवान बुद्ध के दांत का अवशेष, जिसे बौद्ध धर्म के अनुसार दंत धातु कहने का प्रचलन है, का मंदिर विमल धर्म सूर्य ने बनवाया था।
उसे डचों ने सन 1765 में नष्ट कर दिया।
कीर्ति श्रीराज सिंह ने इसको पुनः नए सिरे से बनवाया। सिंगली बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार में विशेष उत्साह दिखाते रहे हैं। उन्होंने भारत, वर्मा, सियाम, मलाया, पेशावर एवं मध्य एशिया में धर्म प्रचार के लिए जत्थे बनाकर प्रयाण किया था। सन 426 में सिंगल द्वीप की 3 भिक्षुनियां नानकिंग चीन पहुंची और उन्होंने न केवल धर्म प्रचार किया वरन शासन तंत्र भी संभाला। अवसान काल में बौद्ध प्रचारकों का अनुत्साह, राज्याश्रय की कृपणता और गृह कलह से लंका की स्थिति बिगड़ती चली गई।
यहां तक कि उसे विदेशियों के आक्रमण का शिकार होना पड़ा। सन 1505 में पुर्तगालियों का लंका में प्रवेश हुआ और उन्होंने छल बल से एक शताब्दी के भीतर ही अपना आधिपत्य जमा लिया।
इसके बाद 1602 में वहां डच पहुंचे। जनता पुर्तगालियों से आजे जा गई थी।
उन्होंने डचों की सहायता से उन्हें मार भगाया, पर इससे कुछ बना नहीं, वहां डच जम गए।
इसके बाद सन 1795 अंग्रेज डचों को भगाने और अपना कब्जा जमाने में सफल हुए। सन 1594 से लेकर 1602 तक पुर्तगालियों का शासन लंका पर रहा। उन्होंने मंदिर तोड़े, पुस्तकें जलाईं और भिक्षुओं का कत्ल कराया। फलस्वरूप शेष भिक्षु अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। 17वीं सदी में राजा कीर्ति ने स्याम से बौद्ध भिक्षु बुलाए और नए सिरे से भिक्षु संघ की स्थापना की। इन दिनों वहां स्याम निकाय के भिक्षु ही अधिक हैं। अरब, डच, पुर्तगाली यहां लगातार आक्रमण करते और अड्डे जमाते रहे।
सन 1796 में अंग्रेजों ने उन घुसपैठियों को खदेड़ कर अपना कब्जा जमा लिया और भारत के साथ साथ लंका पर भी राज्य किया।
सन 1948 में उसे ब्रिटेन ने राष्ट्रमंडल के अंतर्गत औपनिवेशिक सत्ता सौंप दी।
तब से लंका भारत की ही तरह स्वतंत्र राज्य है और उसे नया नाम श्रीलंका दिया गया है।
लंका का अधिक सांस्कृतिक विकास विवरण जानने के लिए निम्न पुस्तकों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। 1H W फाउरिंगटन कृत ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सीलोन, 2G C मेंडिस कृत द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सीलोन, 3B A स्मिथ कृत ए हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन।
लंका में इन दिनों 3 धर्म हैं।
1 बौद्ध धर्म, 2 ईसाई धर्म, 3 हिंदू धर्म।
वहां बहुत से हिंदू मंदिर हैं। रतनपुर और बदुल्ला में विशालकाय हिंदू मंदिर हैं।
तमिल भाषी यहां 1/4 हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। उत्तरी लंका में द्रविड़ वास्तुकला के हजारों हिंदू मंदिर हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि की मूर्तियां स्थापित हैं।
बौद्धों के 2 वर्ग हैं,
एक विरक्त और दूसरे गृहस्थ।
विरक्त लोग धर्म प्रचार, तपश्चर्या और ज्ञान साधना में निरत रहते हैं, अपना निर्वाह गृहस्थों से भिक्षावृत्ति द्वारा प्राप्त करते हैं।
गृहस्थ आजीविका उपार्जन, धर्मानुशासन का पालन तथा धर्म संस्थाओं के लिए अनुदान की व्यवस्था करते हैं।
लंका में सैकड़ों विहार हैं। केवल कोलंबो नगर में ही 24 बड़े विहार हैं। इनके एक भाग में चैत्य होता है जिसमें प्रमुख भिक्षुओं की अस्थियां स्थापित की जाती हैं। इन विहारों में एक बुद्ध का प्रतिमा मंदिर होता है और बोधि वृक्ष के वंशज पीपल के पेड़ की स्थापना की जाती है। प्रवचन और साधन प्रायः यहीं होते हैं। श्रीलंका और वर्मा में इन दिनों बौद्ध धर्म के प्रसार विस्तार का कुछ कहने योग्य उत्साह दिखाई देता है।
लंका छोटा सा देश है, पर उसने महाबोधि सभा और विश्व बौद्ध सम्मेलन नामक 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को जन्म दिया है।
उस देश से अनेक विद्वान भिक्षु विश्व में धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए यात्राएं करते रहते हैं।
वर्मा, सियाम, कंबोडिया, मंचूरिया, मंगोलिया, चीन, तिब्बत, हिंद चीन, लाओस आदि में बौद्ध धर्मावलंबी जनता का बाहुल्य है। इन देशों में भी उस महान धर्म को सुव्यवस्थित एवं परिपुष्ट बनाने के लिए विविध प्रयास चल रहे हैं। स्याम ने अपनी लिपि में संपूर्ण पाली त्रिपिटक 45 बड़ी जिल्दों में छापा है। संसार में यही एकमात्र पाली का संपूर्ण त्रिपिटक है जो प्रकाशित होकर सामने आया है।
नेपाली तथा जापानी बौद्ध भी अपने धर्म से धर्म विजय के लिए कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। मंगोलिया, चीन और तिब्बत में पिछली दशाब्दियों में बौद्ध धर्म की बहुलता थी, पर कम्युनिस्ट शासन में उस दिशा में कुछ विशेष कर सकना उन लोगों के लिए संभव नहीं रहा।
बौद्ध धर्म प्रचार न सही, पर बौद्ध दर्शन से संसार की जनता को परिचित कराने के लिए विश्व के ख्यातिनामा विद्वानों ने महत्वपूर्ण साहित्य का सृजन किया है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर द्वारा स्थापित सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट तथा सेक्रेट बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट नाम की दो ग्रंथमालाएं प्रकाशित होती चली आ रही हैं, जिनके अंतर्गत अनेकों महत्वपूर्ण बुद्ध धर्म पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ छापे गए हैं। T.W.
राइस डेविड्स ने इसी प्रयोजन के लिए एक संस्था स्थापित की है, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, जिसके अंतर्गत 100 से अधिक बड़ी जिल्दों में बौद्ध साहित्य छपा है। लंका भारत के समीप होते हुए भी जाति और धर्म को मिलाने की बीमारी से अछूता है।
पति बौद्ध, पत्नी ईसाई, माँ ईसाई, लड़के बौद्ध, एक भाई मुसलमान, दूसरा ईसाई,
इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। विवाहों में जाति वंश का ध्यान तो रखा जाता है, पर धर्म की भिन्नता के कारण इसमें कोई अड़चन नहीं पड़ती।
इस प्रचलन के कारण यहाँ ईसाई और मुसलमान आक्रमणकारियों को अधिक और स्थायी सफलता नहीं मिली। उन्होंने तलवार के जोर से जो धर्म परिवर्तन कराया, स्थिति बदलते ही पुनः परिवर्तन हो गया और लोग अपने संबंधियों वाले धर्म में लौट गए।
जिस तरह हमारे यहाँ धर्म खतरे में का नारा लगाकर उत्पात खड़े कर दिए जाते हैं, वहाँ उसकी कोई गुंजाइश नहीं।
वहाँ धर्म के नाम पर उपद्रव कभी नहीं होते। लंका का प्रधान उत्पादन कृषि है, आधे लोग किसान हैं।
बड़े उद्योग और खदानों का प्रायः अभाव ही है।
चाय, रबड़, नारियल का निर्यात होता है। कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, यहाँ तक कि चावल भी बाहर से मंगाना पड़ता है।
जल विद्युत से ही बिजली की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में लंका की प्रगति आश्चर्यजनक है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई निःशुल्क है। इस देश में 80% पुरुष और 60% महिलाएं शिक्षित हैं।
साक्षरता के क्षेत्र में लंका एशिया में अग्रणी है। सिंगलियों में बाल विवाह नहीं होते। लड़कियां आमतौर से 18-20 वर्ष के बाद और लड़के 28-30 वर्ष के होने पर विवाह करते हैं। तलाक और विधवा विवाह का कोई प्रतिबंध नहीं है।
विवाहोत्सव बिल्कुल सादगी से होते हैं।
लंका के हिंदुओं में तमिल अधिक हैं। उनमें से अधिकांश कृषक और श्रमजीवी हैं। कुछ व्यापार करते हैं और कुछ नौकरियों में भी हैं। जाति पाति और छुआछूत उनमें भारत की तरह ही प्रचलित है। उत्तरी तथा पूर्वी प्रांतों में इन्हीं की संख्या अधिक है।
यहाँ के हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ खदेर गांव में अवस्थित स्कंद स्वामी का मंदिर है। इस पर श्रावणी पूर्णिमा को मेला लगता है।
श्रीलंका में कुल मिलाकर 1,000,000 भारतीय हैं। 2,00,000 चाय बागानों में काम करते हैं। बड़े व्यवसाय और कारखानेदार तो बहुत थोड़े हैं। थोड़े से चैटिया तमिल चाय बागानों के मालिक हैं। सिंधी, गुजराती, काठियाबाड़ी और पारसी भी व्यवसाय करते हैं। सर्वोदय श्रमदान संगम की प्रवृत्तियों ने उस देश में गांधीवाद चेतना उत्पन्न की है और कई उपयोगी रचनात्मक कार्य आरंभ किए हैं।
जिस लंका का वर्णन पुराणों में मिलता है वह वर्तमान सिंगल द्वीप श्रीलंका से भिन्न है।
यह सुमात्रा हो सकता है। उसी क्षेत्र में कंचनगिरी पर्वत है।
वाल्मीकि रामायण में संभवतः इसी का स्वर्णगिरी नाम से उल्लेख हुआ है।
ब्रह्मांड पुराण में 53वें अध्याय में इसी को कांचनपद कहा गया है।
पाकिस्तान, हमारी सांस्कृतिक दुर्बलता का प्रतिफल।
सिंध प्रांत चिरकाल से भारत की सांस्कृतिक धुरी का केंद्र रहा है।
यूं चिर प्राचीन काल में भारतीय धर्म का उद्भव उत्तराखंड और आर्यावर्त में हुआ, किंतु पीछे बृहत्तर भारत निर्माण की भूमिका में सिंध प्रांत को विशेष महत्व मिला। वहां से मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के देशों के साथ समुद्री मार्ग तथा जल मार्ग अधिक सुविधाजनक था। व्यापार, शासन, धर्म प्रचार, इन तीनों ही प्रयोजनों के लिए सिंध अधिक समीप एवं सुविधाजनक पड़ता था। अस्तु, उस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण क्षमता एकत्रित होती चली गई। मध्य एशिया के निवासियों की पहुंच प्रायः सिंध क्षेत्र तक ही हो पाती थी, इसलिए वे उतने ही क्षेत्र को भारत मानते थे।
उनकी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में होता है।
सिंध को हिंद कहते थे। पीछे वही शब्द हिंद बन गया। हिंद के निवासी हिंदू, हिंदुओं के रहने का भूखंड हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान कहे जाने का प्रचलन इसी प्रकार हुआ।
इस प्रचलन से एक बात स्पष्ट होती है कि कभी भारत का सिंध प्रांत बहुत ही सशक्त रहा है और उसकी धाक समस्त पश्चिमी एशिया ही नहीं यूरोप, अफ्रीका तक छाई रही है। जलयानों द्वारा उपरोक्त त्रिविध प्रयोजनों के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों को यहीं डेरा डालना पड़ता था।
अस्तु, वह प्रदेश न केवल समृद्धि का वरन संस्कृति का भी केंद्र बनता चला गया।
बौद्धकालीन भारत का इतिहास सिंध प्रांत की विशेषताओं से भरा पड़ा है।
वहां के राजाओं ने आगे बढ़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया और मध्य एशिया में उसे पहुंचाने के लिए शक्ति भर चेष्टा की थी। इतना ही नहीं, कभी हिंदुकुश और हिमालय लांघकर जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे तो सिंध प्रांतीय शासन उनका मुंह तोड़ उत्तर देता था। इस पूरे क्षेत्र में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का वर्चस्व सिद्ध करने वाले अगणित प्रमाण अवशेष भरे पड़े हैं।
आज तो सिंध को पाकिस्तान के नाम से विदेश के रूप में गिनना पड़ता है, पर सन 1947 से पूर्व ऐसी स्थिति न थी।
वहां भारतीय संस्कृति के प्रमाण खोजने की बात ही उपहासास्पद होती।
अपने ही देश में अपनी ही संस्कृति के प्रमाण तो पग पग पर थे ही, उन्हें खोजता ही कोई क्यों। सिंध की तरह पंजाब और कश्मीर के प्रांतों की बात है।
तक्षशिला विश्वविद्यालय रावलपिंडी के पास था। उस समृद्ध विश्वविद्यालय की उपयोगिता इसलिए भी थी कि एशिया तथा यूरोप के अधिकांश भाग को भारत के स्थल से यही क्षेत्र जोड़ता था।
कश्मीरी पंडितों की न केवल भारत में वरन विदेशों में भी धाक थी।
तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण का कार्य प्रायः वे ही संभालते थे। चीन और तुर्किस्तान में प्राचीन काल में हिंदू धर्म उन्होंने पहुंचाया था और मध्यकाल में उसके सुधरे हुए रूप बौद्ध धर्म को मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया में पहुंचाने के लिए उन्होंने विशेष साहस दिखाया और साधन जुटाए।
कश्मीर के जिस क्षेत्र में इन दिनों पाकिस्तान का कब्जा है, प्राचीन काल में भारतीय धर्म शिक्षण का वह महत्वपूर्ण केंद्र था।
पाकिस्तान के डाकरी स्टेशन से 10 किलोमीटर आगे मोहनजोदड़ो नामक नगर के खंडहर खोद निकाले गए हैं।
उपलब्ध अवशेषों से उस नाम की प्राचीन आर्य सभ्यता का पता चलता है। उन दिनों कितनी समुन्नत स्थिति के साधन थे और कितने सुविकसित लोग रहते थे, इसका पता सहज ही चल जाता है।
हड़प्पा की खुदाई में भी इसी तथ्य की पुष्टि करने वाले महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं।
पिछली शताब्दियों में सिख धर्म का उद्भव और विस्तार पंजाब प्रांत में हुआ। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक की शिष्य परंपरा पूरे पंजाब प्रदेश में फैली और वहां से उसका विस्तार समस्त देश में हुआ।
इसके पूर्व भी यह प्रांत संस्कृति से उसी प्रकार ओतप्रोत था जिस प्रकार की भारत के अन्यान्य क्षेत्र प्रदेश।
आज पाकिस्तान में हिंदू संस्कृति के आधार खोजने के लिए प्रमाणों को तलाश करने की आवश्यकता पड़ सकती है, पर पूर्व काल में इस तरह से सोचने की कोई तुक न थी। अभी भी कोई पाकिस्तान जाए तो प्रायः हर गांव में सक्रिय और निष्क्रिय देव मंदिरों की ऐतिहासिक धर्म संस्थानों की साक्षी बिखरी पड़ी होगी।
उत्तर भारत में आर्यों का बाहुल्य था।
पंजाब का नंबर अभी भी आगे है। पौराणिक और ऐतिहासिक पर्यवेक्षण करने पर विभाजित पंजाब को विदेश कहने की बात इन परिस्थितियों में भी नहीं बनती। भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में अब इतना ही अंतर पड़ा है कि उन लोगों ने सांप्रदायिक जुनून में पंजाबी भाषा को उखाड़ फेंकने और जातीय एकता को नष्ट करने में एक सीमा तक सफलता प्राप्त कर ली है,
किंतु आकृति और प्रकृति का साम्य अभी भी विद्यमान है।
रक्त और वंश भी एक है। ऐसी दशा में यह आशा करना असंभव नहीं है कि जब धर्मांधता का बुखार उतरेगा और शांतचित से अपने इतिहास पर दृष्टि डालने का अवसर मिलेगा तो पश्चिम पंजाब और पूर्व पंजाब के लोगों की नसों में बहने वाला एक सा रक्त कभी न कभी फिर एकता की बात सोचेगा और उस दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत में इस्लाम धर्म के विस्तार की पृष्ठभूमि अत्यंत स्पष्ट है।
मध्य एशिया के आक्रमणकारी उसे इस देश में लाए।
पराजितों को तलवार की नोक पर उसे स्वीकार करना पड़ा। कत्लेआम, जजिया आदि के मर्मांतक दबावों को सहन कर सकना जिन लोगों के लिए संभव शक्य न हो सका, वे इस धर्म में दीक्षित हो गए। यूं ऐसे लोग भी कम न थे जिन्होंने चोटी कटने की अपेक्षा सिर कटाना अधिक गौरवास्पद समझा और अपने जीवित बच्चों को दीवार में चिना जाना बलात् धर्म परिवर्तन की तुलना में अच्छा समझा।
आक्रमणकारियों को जहां पैर जमाने का अवसर मिला वहां उन्होंने अपहृत भारतीय ललनाओं को अपने बाड़े में कैद किया, उनसे संतानें उत्पन्न करके वंश वृद्धि को धर्म वृद्धि का एक तरीका बनाया,
प्रलोभनों से भी काम बनाया।
कुछ को आकर्षक धर्मोपदेशकों ने और राज्य सहकार पाने के आकर्षण ने भी अपनी ओर खींचा। इस प्रकार उस धर्म का विस्तार होने लगा। उन दिनों राज्य धर्म ही प्रजा का धर्म बन जाता था। इस्लाम के विस्तार का एक और पक्ष था जिसने आक्रमणकारियों के प्रयासों की अपेक्षा 100 गुना अधिक पथ प्रशस्त किया। अंधकार युग की जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत की विकृति हिंदुओं में उन दिनों बेतरह छाई हुई थी।
एक बार जो व्यक्ति किसी प्रकार मुसलमानों के संपर्क में आ गया, जबरदस्ती मुंह में मांस ढूंस देने, झूठा पानी पिला देने, छू जाने के बाद कोई हिंदू अपने धर्म में सम्मिलित नहीं रह सकता था। कुएं में गौ मांस डाल दिया गया, उसका किसी को पता न था।
पूरे गांव ने उसका पानी पी लिया।
पीछे उस कृत्य को करने वालों ने घोषणा कर दी, बस पूरा गांव जाति बहिष्कृत हो गया और उसे मुसलमान ठहरा दिया गया। इस प्रकार के बहिष्कार में कट्टरपंथी पुरोहितों ने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। धर्म रक्षा के नाम पर वे आगे बढ़कर इस मुहिम को चला रहे थे।
असल में उन्हें गुप्त रूप से आक्रमणकारी विधर्मियों द्वारा मोटी रिश्वतें दी जा रही थी, जागीरें बख्शी जा रही थी।
सरकारी अधिकारी उन्हें हर तरह की सहायता देते और जनता में सम्मान बढ़े ऐसी चमत्कारी किंवदंतियों के फैलाने में पूरा प्रयास करते थे।
एक ओर जहां सच्चे धर्मनिष्ठ को मर्मांतक पीड़ा देकर मौत के घाट उतारा जा रहा था, वहां दूसरी ओर मिली भगत वाले साधु बाबाओं और पंडितों को पूरा पूरा प्रत्यक्ष और परोक्ष राज्याश्रय मिल रहा था। पिछले 1000 वर्ष में भारत में नित नए संप्रदाय जन्मते रहे हैं, नित नए चमत्कारी धर्मगुरु उपजते रहे हैं। इनका एक प्रयोजन तो भारत की धार्मिक एकता को नष्ट करके फूट के बीजों को अधिकाधिक विस्तृत करना था, और दूसरी ओर कट्टरता के समर्थक नए नए सिद्धांत गढ़कर बहिष्कार दुर्भिसंधि को पूरी तरह बल देना था। इस प्रकार इन संप्रदाय संस्थापक चमत्कारी तथा कट्टरपंथी लोगों ने भारत में मुसलमानी धर्म फैलाने में वह भूमिका निभाई जो प्रत्यक्ष रूप से किए गए बल प्रयोग करने वालों की तुलना में हजारों गुना अधिक सफल सिद्ध हुई। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन वाले कम थे,
बहुत करके भय एवं लोभ की विवशता से धर्म बदलना पड़ा। इससे भी हजारों गुने वे लोग थे जिन्हें कट्टरता ने बलपूर्वक विधर्मी खेमे में प्रवेश करने के लिए बाध्य कर दिया।
अछूतों के साथ जो अमानुषिक एवं अपमानजनक असमानता बरती जा रही थी, उससे पिंड छुड़ाने के लिए भी उन्हें विधर्मी बन जाना अधिक श्रेयस्कर समझा।
इस प्रकार एक ओर से दबाव और दूसरी ओर से बहिष्कार ने दो पाटों वाली चक्की का काम किया और उसमें पिसकर अनाज का बहुत भाग आटा बन गया। इसी प्रकार संख्या बढ़ती चली गई और वह इतनी अधिक पहुंची कि पाकिस्तान के रूप में विभाजन सामने आ खड़ा हुआ। यह ठीक है कि अंग्रेजों ने इसके लिए मुसलमानों को पूरी तरह प्रोत्साहित किया और सहयोग दिया। धर्मांधता के आवेश में बंटवारे की मांग उठाए और उसी को पूरा कर लिया गया, पर हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इससे भी अधिक बड़ा कारण हमारी अपनी वे दुर्बलताएं थीं जो अंधकार युग में संस्कृति के भीतर छद्मवेश धारण कर घुस पड़ी थी।
भाग्यवाद, ईश्वर इच्छा से सब कुछ होना, होनहार भवितव्यता, मनुष्य का नियति के हाथ का खिलौना होना और दार्शनिक भ्रष्टताओं ने हिंदू जाति के चिंतन को बुरी तरह परावलंबी बना दिया था। लोग भवितव्यता बनाने वाले देव दानवों का, ग्रह नक्षत्रों का इंतजार करते थे। अपने को सर्वथा असहाय मानते थे। सहायता के लिए किन्हीं परोक्ष शक्तियों का द्वार खटखटाते थे। सोमनाथ मंदिर नष्ट होते समय पंडितों का राजाओं को युद्ध करने से रोकना और अनुष्ठान चालू करना इस तथ्य का प्रमाण है।
ऐसे ही प्रमाणों की उन दिनों भरमार थी।
अस्तु, आक्रमणकारियों का रास्ता बिना किसी विशेष प्रयास के अपने आप साफ होता चला गया।
प्रतिरोध के नाम पर उन्हें बहुत अड़चन नहीं उठानी पड़ी।
छद्मवेशी धर्मगुरुओं का बहिष्कार अस्त्र इतना प्रबल था जिसने तत्कालीन धार्मिक जनता के सिर पर अपना जादू चढ़ाकर अपनों को बिराना बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
जो लोग अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहते और फिर से हिंदू धर्म में ही रहने को लालायित थे, उन्होंने शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की, किंतु उन्हें इसका सौभाग्य न मिल सका। ऐसे नौ मुस्लिम लाखों करोड़ों की संख्या में पिछले दिनों तक रहे हैं, जिन्होंने अपने नाम, गोत्र, प्रचलन, धर्मकृत्य, संस्कार हिंदू परंपरा के अनुरूप बनाए रखे।
थोड़े रिवाज मुसलमानों के भी वे अपनाते थे, पर साथ ही हिंदू परंपराओं पर उनकी निष्ठा कम न थी। ऐसी दशा में वे न पूर्ण मुसलमान थे, न पूर्ण हिंदू। उन्हें नौ मुस्लिम या मलकाना कहा जाता था। हरियाणा प्रांत तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले इन्हीं अर्ध हिंदू अर्ध मुस्लिमों से भरे पड़े थे।
वे पूर्ण मुसलमान तो तब हुए हैं जब मुस्लिम लीग ने धर्मांधता का विष सर्वत्र पूरी तरह संव्याप्त करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहाना आरंभ कर दिया।
जरा जरा सी बात पर जातिच्युत करके उन पर इतने प्रतिबंध लगाना कि उनके लिए उनको मान्य अथवा विधर्मी होने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ही न रहे, हिंदू धर्मानुयायियों की पिछले दिनों भारी दुर्बलता रही है।
असंख्य विधवाओं को बलात् वैधव्य निभाने के प्रतिबंधों ने उन्हें अन्य धर्मानुयायी बनने या वेश्यावृत्ति अपनाने के लिए विवश किया, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। जहां अन्य धर्मावलंबी दूसरे धर्म वालों को अपने संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए प्रचुर धन, प्रभाव और साधन लगाते रहे हैं, वहां हिंदू धर्मानुयायियों ने ठीक उसका उल्टा किया। वे अपने अंगों को काट काट कर फेंकने में बहादुरी और बड़ाई अनुभव करते रहे। मुसलमान और ईसाई धर्म पिछले 1000 वर्षों में आंधी और तूफान की तरह बढ़े हैं। दोनों धर्मों को मिलाकर संसार की प्रायः 2/3 जनता इन धर्मों में दीक्षित हो गई है।
इसके मुकाबले हिंदू धर्म निरंतर घटा है।
देश की जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से हिंदू धर्मानुयायी नहीं बढ़ रहे हैं, वरन उनका अनुपात घटता जा रहा है।
इसका एकमात्र कारण अभी तक उन दुर्बलताओं का जीवित रहना है जिनने पिछले दिनों अपनों को वीराना बनाने की भूमिका निभाई थी।
अछूतों के साथ हमारा व्यवहार प्रायः वही है। सरकारी कानून का असर थोड़े पढ़े लिखे लोगों और शहरों में ही हुआ है। देहाती अशिक्षित क्षेत्रों में स्थिति जहाँ की तहाँ है। ऐसी दशा में उनकी प्रवृत्ति विधर्मी बनने के लिए उभरती है तो उसमें अनुचित भी क्या है।
कौन अकारण अपने मानवीय अधिकारों का हनन कराता हुआ किसी अविवेकी वर्ग का अंग बने रहना स्वीकार करेगा।
पिछले दिनों वे मुसलमान बनते रहे, अब उसी तेजी से ईसाई धर्म की शरण में जा रहे हैं।
इसका कारण अपनी ही दुर्बलता है। जब तक उसे दूर न किया जाएगा, मात्र शुद्धि संस्कार करके धर्म में वापस बुला लेने के मनोविनोद से भी कुछ काम न चलेगा।
अन्य धर्मों से शुद्ध करके हिंदू धर्म में प्रवेश करने वालों के लिए जब तक रोटी बेटी का द्वार नहीं खुलेगा, तब तक शुद्ध हुए लोग अपने को और भी विकट स्थिति में अनुभव करेंगे और उस शुद्धि को छोड़कर फिर उसी पुरानी अशुद्धि में लौट आएंगे।
पाकिस्तान सन 1947 में पहले बन चुका।
ईसाईस्तान की नागालैंड के रूप में शुरुआत हो गई है।
केरल का एक जिला मुसलमान बहुल बनाने की दृष्टि से विनिर्मित हुआ है।
यह सांप्रदायिक आधार पर बिखराव के चिन्ह हैं।
सिखिस्तान द्रविड़िस्तान की मांगे अपने स्थान पर कायम हैं।
उनके कारण प्रत्यक्षत चाहे जो कहे बताए जाते हों, पर मूलतः हिंदू धर्म की दुर्बलता ही उसका कारण है। इसी ने एकता के मूलभूत जातीय आधार को खोकर विलगांव और बिखराव के हेय तत्वों को अपने भीतर गहराई के साथ प्रश्रय दिया हुआ है। अलग राज्यों की मांग न करने पर हर धर्म हर जाति बिरादरी का अपना एक अलग देश समाज बना हुआ है। एक छोटे वर्ग के लोग उस छोटे से दायरे में ही रोटी बेटी का व्यवहार करके और अन्य वर्ग के लोगों को अपने से पृथक ही नहीं नीच हेय भी मानते हैं। जातियों और उपजातियों के नाम पर यह पृथकतावादी विष इतना गहरा घुस गया है कि वस्तुतः हिंदू जाति कहने भर को एक जाति है, अन्यथा उसमें नारंगी के अंदर फांक वाला दयनीय दृश्य ही दिखाई पड़ रहा है। यह हजारों जातियों उपजातियों में बंटी बिखरी पड़ी है और पारस्परिक सहयोग के सूत्र पूरी तरह छिन्न भिन्न हो रहे हैं।
यह रोग यहाँ तक बढ़ा है कि अब राजनीतिक चुनावों में भी जाति बिरादरी को ही प्रधान प्रश्रय मिलने लगा है।
वोट मांगने और देने में लोग जाति पक्ष के लिए अधिक आकर्षित प्रभावित होते हैं। सवर्णों में भी एक जाति में भी उपजातियों के आधार पर नीच ऊंच का हिसाब लगाया जाता है।
फिर अन्य जातियों को ऊंच नीच के हिसाब से नापा खोला जाए तो आश्चर्य ही क्या है।
पाकिस्तान क्या है, कितना है, कैसा है, इसकी विवेचना बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हमें उसके पीछे सन्निहित अपनी उन दुर्बलताओं को ही साकार बनाकर खड़ा देखना चाहिए जो पिछले दिनों हमारे जातीय जीवन में भयावह विकृतियों के रूप में गहराई तक प्रविष्ट हो गई हैं।
एक शब्द में पाकिस्तान का वर्णन करना हो तो उसे हमारी सांस्कृतिक धार्मिक एवं दार्शनिक भ्रष्टता का मूर्तिमान अभिशाप कह सकते हैं। अन्यथा जो मुट्ठी भर विधर्मी बाहर से आए वे हमारी भूतकालीन महानता यदि जीवित रही होती तो उसी में घुलकर आत्मसात हो गए होते। यदि हमारी चिंतन भ्रष्टता उत्पन्न न हुई होती तो निश्चय ही नक्शा आज से सर्वथा भिन्न प्रकार का होता। तब भारत दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता दिखाई न देता। नेफा अक्साई चीन वर्मा लंका को विदेश की तरह न गिनना पड़ता। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पृथक पृथक न होते। बृहत्तर भारत के समय जो सूत्र जो आदर्श हमारे सामने थे, यदि उन्हें सुरक्षित रखा जा सका होता तो बिखराव के दुर्भाग्य का वर्णन विवेचन करने के लिए ये पंक्तियां लिखने की कोई आवश्यकता न पड़ती। बांग्लादेश 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 15 अगस्त 1947 तक भारत ही था। यह अभिन्नता लाखों वर्ष से चली आ रही थी।
इससे पूर्व कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि बंगाल जो अन्य प्रांतों की तरह इस देश का अविच्छिन्न अंग था कटकर अलग हो जाएगा।
अंग्रेजी सरकार ने सन 1904 में यह प्रयत्न किया था कि शासन व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। उस योजना के विरुद्ध अत्यंत तीव्र प्रतिक्रिया हुई।
बंग भंग आंदोलन चला। बंगाली अपनी एकता के इस छोटे आधार पर थोड़ी सी भी चोट पड़ना सहन नहीं कर सकते थे। अस्तु आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया और अंततः अंग्रेजों को वह विभाजन रद्द करके पूरा बंगाल एक ही रहने देने के लिए बाध्य होना पड़ा।
इसे दुर्भाग्य का एक दौर ही कहना चाहिए कि भारत को स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन का अभिशाप भी सहन करना पड़ा।
एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में कटा जिसमें से सिंध और पंजाब प्रांत पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए और बंगाल आधा कटकर पूर्वी पाकिस्तान बन गया। विभाजन की कटुता अब 27 वर्ष बीत जाने पर भी दूर नहीं हो पाई है।
जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से कम था, फिर भी पंजाबी मुसलमान हर तरह से बंगालियों का शोषण करने पर तुले थे।
उनकी भाषा संस्कृति भावना परंपरा सब कुछ नष्ट करके उन्हें अरब बनाने के लिए चोटी एड़ी का पसीना एक कर रहे थे।
बंगाली भाषा समाप्त कर उसके स्थान पर उर्दू अपनाने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा था। बंगाली एक प्रकार से दूसरे दर्जे के नागरिक थे।
उनका किस हद तक शोषण संभव है, इसी के ताने बाने लगातार बुने जा रहे थे।
बात जब अति की सीमा तक पहुंच गई तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में विद्रोह फूट पड़ा।
सभी जानते हैं कि उसे दबाने के लिए पंजाबियों ने ऐसा नरिशंस कत्लेआम किया जिसकी तुलना इतिहास में कहीं कदाचित ही मिल सके।
30 लाख से अधिक देशभक्त नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। अपहरण, बलात्कार, लूट खसोट, दमन के अन्य तरीकों का तो कहना ही क्या।
उस बर्बरता से भयभीत बंगाली प्रजाजनों में से करीब 1 करोड़ भागकर शरणार्थी के रूप में भारत चले आए। इस दबाव को भारत कब तक सहता?
अंततः उसने विद्रोहियों को सहायता भेजी,
जमकर लड़ाई हुई और सन 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया।
अब उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। विभाजन से पूर्व बांग्लादेश भी विशुद्ध रूप से भारत ही था।
भारत और बंगाल का प्राचीन इतिहास एक है। देश के अन्य प्रांतों की तरह वहां भी एक ही संस्कृति, एक ही परंपरा रही है। बांग्लादेश का प्राचीन नाम बंगदेश है।
चिरकाल पूर्व यहां पौंड्रवंशी राजा राज्य करते थे, पीछे सेन वंशियों का शासन हुआ। पूरा क्षेत्र हिंदू धर्मानुयायी था और संस्कृत राजभाषा थी। सन 900 से 1100 तक 200 वर्ष बौद्ध धर्मानुयायी पाल वंशी राजाओं का शासन रहा। उन दिनों पाली राजभाषा बनी। अंतिम राजा लक्ष्मण सेन थे। उनके समय इस्लामी धर्म प्रचारक वहां पहुंचने लगे थे। उन्हीं दिनों एक तुर्की फकीर थे, शेख जलालुद्दीन तिवरी। राजा लक्ष्मण सेन उन्हें बहुत मानते थे। उनसे आवश्यक सूचनाएं पाकर सन 1204 में तुर्क सरदार मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने हमला कर दिया।
केवल 18 घुड़सवारों से उसने महल पर कब्जा कर लिया और लक्ष्मण सेन भाग खड़े हुए। इसके बाद क्रमशः बंगाल के सुविस्तृत क्षेत्रों पर मुसलमानों का कब्जा होता चला गया और इस्लाम धर्म फैलना आरंभ हो गया।
बांग्लादेश का क्षेत्रफल 55,126 वर्ग मील है, समुद्री सीमा 430 मील। पिछली जनगणना के अनुसार वहां की जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग मानी गई थी।
बांग्लादेश संसार के सबसे घने बसे देशों में से है।
औसत आबादी 1 वर्गमील पीछे 950 व्यक्ति है। ढाका जिला घनेपन की दृष्टि से संसार भर में सबसे आगे है। वहां प्रति वर्गमील 1768 मनुष्य बसते हैं। इस क्षेत्र के मुंशीगंज क्षेत्र में यह औसत बढ़कर प्रति वर्गमील 2500 व्यक्तियों तक जा पहुंची है। लोहागंज तो और भी ज्यादा घना बसा है, वहां प्रति वर्गमील 3000 व्यक्ति रहते हैं।
इस देश की 96% जनता देहातों में निवास करती है।
गरीबी और घनेपन को देखते हुए यहां जन्म दर बहुत बड़ी चढ़ी है।
जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं उसे देखते हुए 10 वर्ष में दूनी हो जाएगी और नए नए संकट उत्पन्न करेगी। ढाका का नामकरण ढाकेश्वरी देवी के नाम पर हुआ है।
यह प्राचीन मंदिर सुविख्यात है।
प्राचीन काल के बौद्ध मंदिरों की इस नगर में भरमार है। उनमें से कितने ही फूटे पड़े हैं, कितनों में ही भिक्षुओं का निवास है। कुछ मठ वर्मा शैली पर बने हैं।
चिटगांव जिला वर्मा सीमा से मिला है।
इस क्षेत्र में अधिकांश लोग बौद्ध धर्मावलंबी हैं। कुमिल्ला से 5 मील आगे खुदाई होने पर मीनामती नामक प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष मिले हैं, जिनमें हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों, स्तूपों, मठों की भरमार है। यह 7वीं सदी में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। उपलब्ध सिक्कों और प्रतिमाओं से इस सांस्कृतिक केंद्र की गौरव गाथा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। राजशाही जिला के पहाड़पुर नगर में अत्यंत विशालकाय बौद्ध विहारों के अवशेष हैं। यह पहाड़ जितना ऊंचा दिखाई देने से ही पहाड़पुर कहलाता है।
पिछली जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 1 करोड़ थी।
रंगपुर, दीनाजपुर, फरीदपुर, ढाका और खलना जिलों में हिंदुओं की संख्या अधिक थी।
फरीदपुर जिले में हिंदुओं का बहुमत था। बौद्धों की आबादी भी 4 लाख के लगभग थी। हिंदू संख्या की दृष्टि से अल्पमत होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से वहां हिंदू संस्कृति का प्राधान्य है। वेशभूषा, भाव, भाषा, साहित्य, सभ्यता में पूरी भारतीयता है।
इस देश के निवासी कट्टरपंथी नहीं हैं।
उनका हिंदू धर्म के प्रति न तो द्वेष है और न असहिष्णुता का भाव। अब बांग्लादेश की राजभाषा बंगाली है। बंगाली साहित्य भारतीय संस्कृति की छाया से पूरी तरह अनुप्राणित है।
धर्म की दृष्टि से वहां मुसलमानों का बाहुल्य है, पर भाषा, वेश, भाव आदि की दृष्टि से हिंदू बंगाली और मुसलमानी बंगाली में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो विष पिछली शताब्दी में वहां फैलाया गया और पृथकता तथा घृणा का वातावरण उत्पन्न किया गया, अब समय है जब उसे आसानी से धोया जा सकता है और भौगोलिक न सही सांस्कृतिक एकता का शिलान्यास किया जा सकता है।
प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति।
प्रवासी भारतीयों की संख्या संसार भर में फैली हुई है। वे न्यूनाधिक मात्रा में 126 देशों में बसे हुए हैं। पिछली जानकारियों के आधार पर वर्मा में 3 लाख, मलेशिया में 9.5 लाख, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि पूर्वी द्वीप समूहों में 12 लाख, मॉरिशस में 5 लाख, गायना में 3.5 लाख, ट्रिनिडाड में 3 लाख, फिजी में 3 लाख बसे हैं। मॉरिशस में 67% और फिजी तथा गायना में आधे और ट्रिनिडाड में एक तिहाई हैं। फिजी से पिछले दिनों भारी संख्या में भारतीयों का पलायन हुआ है। संसार के विभिन्न भागों में भारतीय सुशिक्षित प्रतिभाएं जाकर बस गई हैं।
सन 1988 की जानकारी के अनुसार इनमें 9,497 चिकित्सा वैज्ञानिक, 17,567 इंजीनियर, 12,500 टेक्नीशियन, 606 गणित शास्त्री, 305 समाज शास्त्री थे। भारत की अपेक्षा अधिक आर्थिक सुविधाएं पाने के प्रलोभन में इन्हें अपनी मातृभूमि का मोह छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है।
पिछले दिनों राष्ट्रवाद की जो हवा संसार भर में फैली है, उसके कारण विदेशियों को अपने देश से खदेड़ देने की लहर सर्वत्र बह रही है। उसकी चपेट में उन भारतवासियों को भी जाना पड़ा है जो उन देशों में पीढ़ियों से बसे हुए हैं और स्थायी नागरिक बन गए हैं। उदार देशों का दृष्टिकोण दूसरा है। वे भारतीयों की श्रमशीलता एवं पूंजी का लाभ लेना चाहते हैं और न्याय का आदर करते हैं, पर जहां संकीर्ण राष्ट्रवाद है, वहां अपनों को ही रहने देने की प्रवृत्ति चल रही है, अन्यों को उखाड़ा जा रहा है, विशेषकर उन्हें जिन्हें स्थिर नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है और अस्थायी परिपत्रों पर वहां निवास कर रहे हैं। वहां की सरकारें जब अधिक दिन ठहरने की आज्ञा नहीं देती, तब उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में किस देश में प्रवासी भारतीयों की कितनी संख्या है, इसकी सही गणना बतला सकना कठिन है, पर पिछले दिनों जो सर्वेक्षण किया गया है उसके अनुसार संसार के प्रायः 126 देशों में लगभग 3.25 करोड़ भारतीयों की जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इनका विवरण इस प्रकार है।
अफगानिस्तान 30,000, सीलोन 1,234,126, सदन 6,000, चाइना 5,920, अल्जीरिया 1,132, चिली 363, अर्जेंटीना 1,160, कोलंबिया 234, ऑस्ट्रेलिया 55,108, कैमासद्वीप 85, ऑस्ट्रिया 1,650, कांगो 6,000, बेहरीन 15,500, क्यूबा 320, बारबोडोज 1,512, साइप्रस 80, बेल्जिया 2,377, Czechoslovakia 110, Bolivia 35, Dahomey 20, Botswana 710, Denmark 2,560, Brazil 3,300, Ethiopia 45,200, Bulgaria Aprapya, Fiji 141,000, Burma 252,000, Finland 280, Burundi 375, French Guiana 320, Cambodia 980, France 11,200, Cameroon 320, Ghana 3,750, Canada 80,000, Gibraltar 250, Grenada 9,500, Libya 1,935, Greece 313, Siberia Aprapya, Guyana 474,000, Madagascar 26,000, Hong Kong 8,000, Malawi 21,000, Hungary 445, Malaysia 1,250,000, Indonesia 35,000, Malta 100, Iran 5,100, Mauritius 620,000, Italy 5,761, Mexico 520, Iraq 13,570, Morocco 1,540, Ireland 950, Muscat 5,500, Jamaica 29,951, Netherlands 502, Japan 11,141, New Zealand 16,130, Jordan 539, Nigeria 13,700, Kenya 152,300, Norway 1,135, Kuwait 36,000, Panama 1,361, Laos 3,800, Philippines 3,516, Lebanon 1,365, Poland 547, Peru 510, Syria 1,100, Qatar 3,000, Tanzania 112,000, Romania 449, Thailand 38,014, Rwanda 540, Trinidad and Tobago 480,000, Saudi Arab 11,035, Tonga Saginaw 373, Tonga Ivory Coast 51, Transiel States 5,000, Zambia 28,600, Tunisia 530, Sierra Leone 425, Turkey 611, Singapore 139,000, United Arab Republic 11,000, Somalia 11,360, Uganda 76,600, Zimbabwe 19,100, UOKO, England 1,270,000, Spain 11,600, Uruguay 990, Sudan 12,550, USOAO, America 242,062, Saint Vincent 13,703, USSR, Rus 118,000, Sudan 12,550, Venezuela 15,000, Suriname 199,000, Vietnam 13,000, Switzerland 5,900, Yemen, Uttar 1,621, West Germany 146,810, Yugoslavia 1,966.
प्रवासी भारतीयों के विदेशों में पहुंचने, वहां बसने, पैर जमाने और उन क्षेत्रों की प्रगति में सहायता करने के खोजपूर्ण विवरण कितनी ही पुस्तकों में मिलते हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ दिए जाते हैं।
बेंडेल थॉमस लिखित हिंदुइज्म इन वेद्स अमेरिका, अनिरुद्ध गुप्ता लिखित इंडियन एब्रॉड एशिया एंड अफ्रीका, सीनप्पा आर्य रत्नम लिखित इंडियन इन मलेशिया एंड सिंगापुर, जॉर्ज डेल्फ लिखित एशियंस इन ईस्ट अफ्रीका, एड्रियन सी जीरो मायर लिखित इंडियंस इन फीजी, रश्मि देसाई लिखित इंडियन इमिग्रेंट्स इन ब्रिटेन, लैम्बर्ट रिचार्ड लिखित इंडियन स्टूडेंट्स ऑन एन अमेरिका कैंपस, डॉक्टर जीरो ब्रिजनिंग लिखित सुरीनाम, रॉबिन ब्रेयंस लिखित ट्रिनिडोड एंड टाबेगो, बर्टन बेनीडिक्स लिखित इंडियंस इन प्लूरल सोसाइटी, मैगेटी बेपिनीज लिखित इंडो कम्बोडिया आदि पुस्तकें प्रवासी भारतीयों की स्थिति पर अच्छा प्रकाश
डालती हैं।
प्रो जीरो हेरन ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिकल रिसर्चेज में भारतीयों के प्रवास उत्साह का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि धर्म प्रचार एवं विश्व कल्याण जैसे उच्च आदर्शों के अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि उन दिनों कृषि योग्य जितनी भूमि थी एवं निर्वाह के साधन थे उसे देखते हुए जनसंख्या बढ़ती जाती थी।
बुद्धिमान लोगों ने यह उचित समझा कि उतनी छोटी सीमा में मरते खपते रहने की अपेक्षा क्यों न निकटवर्ती उन देशों में जाकर बसा जाए जहां प्राकृतिक सुविधाओं के अतिरिक्त वहां के निवासियों की सेवा सहायता का प्रयोजन भी पूरा किया जा सकता है। ऐसे ही कई कारणों से विदेश प्रवास का उत्साह जागा और वह आगे बढ़ा।
उन दिनों छोटे छोटे राजाओं की पारंपरिक प्रतिस्पर्धा से आए दिन होने वाले युद्ध और तज्जनित अव्यवस्था भी प्रतिभाशाली लोगों को प्रवास के लिए प्रोत्साहित करने लगी थी।
इंडिया इन ग्रीस ग्रंथ के विद्वान लेखक पीकॉक ने महाभारत युद्ध की प्रतिक्रियाओं पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उसका एक परिणाम यह भी बताया है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति भारत की शांति व्यवस्था में गड़बड़ी देखकर वहां से बाहर निकल पड़े और सुदूर देशों में जाकर उन्होंने अपनी बस्तियां बसाई तथा अपनी अद्भुत प्रतिभा द्वारा वहां की प्रगति में असाधारण योगदान दिया।
भारतवर्ष की उस युद्ध से भले ही कुछ हानि हुई हो पर पड़ोसी देशों ने उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सहारे अपनी पिछड़ी हुई परिस्थितियों से त्राण पाने में उत्साहवर्धक लाभ उठाया। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, शिल्प, कला, संस्कृति, धर्म, चिकित्सा, शिक्षा, समाज व्यवस्था, युद्धकला, नौकायन, शासनतंत्र आदि की ऐसी सुखद उपलब्धियां प्रस्तुत की वैसी वहां पहले कभी नहीं रही थी। पाश्चात्य लोगों का दृष्टिकोण भले ही यह रहा है कि भारतीयों का विदेश प्रवास आर्थिक लाभ एवं सुविधा संपादन के लिए हुआ, किंतु तथ्य इसके सर्वथा विपरीत है। भारत की स्थिति भूतकाल में हर दृष्टि से विदेशों की अपेक्षा अच्छी थी।
वे इतनी कष्ट कर इतनी लंबी यात्राएं करके उन देशों में क्यों जाते जो स्वयं ही गई गुजरी स्थिति में रह रहे थे। वहां जाकर क्वा खोदना और पानी पीना ही संभव था। वास्तव में भूतकाल में विश्व सेवा का उद्देश्य लेकर ही भारतीय विश्व के कोने कोने में गए थे। हाँ, अंग्रेजी शासन के जमाने की बात दूसरी है।
उनने अपने अधिकृत भागों को सरसब्ज बनाने के लिए भारत के श्रमिकों को तरह तरह के प्रलोभन देकर निर्यात किया और उनके श्रम से अपनी औपनिवेशिक संपन्नता बढ़ाई। उस श्रमिक निर्यात व्यवसाय के पृष्ठ अवश्य ही बहुत कष्टदायक हैं।
उन दिनों भारतीयों का शोषण दोहन उसी प्रकार का था जैसा कि गोरे लोग काले लोगों को पकड़कर दास बना लेते थे और उनसे अमेरिका आदि में ले जाकर पशुओं जैसा काम लेते थे।
उन दिनों निस्संदेह वे श्रमिक गरीबी और अशिक्षा के कारण ही बहकाकर अन्यत्र ले जाए गए थे। अंग्रेजों का सितारा जिन दिनों चमक रहा था उन दिनों वे अधिकाधिक भूभाग पर अपना कब्जा जमाते चले गए। उन दिनों ब्रिटेन संसार में पहले दर्जे की शक्ति थी।
उपनिवेशों का विस्तार इतना अधिक कर लिया था जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था।
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सभी महाद्वीपों में अंग्रेजों का बोलबाला था।
कब्जा किए क्षेत्रों को बसाने और वहां उत्पादन आरंभ करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता थी। यह श्रम शक्ति उन्हें भारत से प्राप्त करना उचित लगा सो उन्होंने यहां से सुलभ वेतन में शर्तबंदी प्रतिबंधों के अंतर्गत श्रमिक प्राप्त किए और उन्हें उपनिवेशों में भेजना आरंभ कर दिया।
ब्रिटिश उपनिवेशों में जहां भारतीय कुलियों को बड़ी संख्या में भेजा उनमें ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, सुरीनाम, डच गायना, जमैका, फिजी, बारबेडीज, लीवाडेस, मॉरिशस को मुख्य माना जा सकता है।
यूं उन्हें अन्यान्य देशों को भी निर्यात किया गया था।
वे भी या तो अंग्रेजों के पूर्ण आधिपत्य में थे या उनके गहरे स्वार्थ वहां जुड़े हुए थे। इन देशों में मलाया, गिलवत द्वीप, हांगकांग, न्यूजीलैंड, स्टेट सेटलमेंट्स, युगांडा, जंजीवार, सेंट लुशिया, ग्रेनेडा, केनिया, तंजानिया, सिसलिज, वाहावान, सियेरा लियोन, बारबेडीज, नाइजेरिया, होंडुरास आदि का उल्लेख किया जा सकता है।
थोड़ी थोड़ी संख्या में तो अनेक देशों को गए थे। इनमें कुछ ऐसे थे जो एक देश में पहुंचाए जाने के बाद उन देश वालों ने उनका निर्यात दूसरे देश के लिए कर दिया।
सन 1842 से लेकर सन 1870 के बीच 28 वर्षों में तरह तरह के प्रलोभन देकर निर्यात किए गए भारतीय कुलियों की संख्या इस प्रकार थी। मॉरिशस को 351,401, ट्रिनिडाड 42,519, जमैका 1516, पश्चिमी द्वीप समूह को 7,020, नेटाल 64,427, फ्रांसीसी उपनिवेशों को 31,346।
राजनीतिक दृष्टि से जो जिस देश का नागरिक है उसे वहां का निवासी कहा जाएगा, भले ही वह या उसके पूर्वज कहीं भी रहे जन्मे हों। विदेशों में रहने वाले भारतवासियों में से अधिकांश ने उन्हीं देशों की नागरिकता ले ली है,
इसलिए राजनीतिक दृष्टि से वे अंग्रेज, अमेरिकन, फ्रांसीसी, अफ्रीकी, बर्मी आदि ही कहे जाएंगे, पर प्रवासी भारतीयों से अपना मतलब दूसरा है।
जो भारतीय धर्मानुयायी हैं, जो भारतीय मूल के हैं, जो अपनी धर्मभूमि भारत को मानते हैं और भारतीय संस्कृति जिनके जीवन व्यवहार में आती है, ऐसे लोगों को सांस्कृतिक दृष्टि से हम भारतीय कहते हैं, और चूंकि वे भारत से अन्यत्र गए हैं इस कारण उनको प्रवासी के नाम से संबोधित करते हैं। प्रवासी भारतीयों की हमारी व्याख्या उनसे भिन्न है जो राजनीतिक क्षेत्र में की जाती है। हमारी व्याख्या के अनुसार अन्य देशों में रहने वाले भारतीयों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है।
1. नेपाल, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका में रहने वाले हिंदू।
अब खंड विभाजन की राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें पृथक कर दिया है।
2. जो कभी कुली प्रथा के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने अथवा अपने मित्र देशों के उपनिवेश बसाने के लिए अन्य देशों में भेजे थे और वे वहीं बस गए, जैसे मलेशिया, जमैका, अफ्रीका, सुरीनाम, ट्रिनिडाड, गायना, मॉरिशस, फिजी आदि।
कनाडा और कैलिफोर्निया में बसे हुए पंजाबी किसान खेती उद्योग के लिए ले जाए गए थे, पर अब वे वहीं के निवासी बन गए हैं। 3. वे लोग जो व्यापार के उद्देश्य से वहां गए और अब वे वहीं बस गए हैं। इनमें कारीगर, शिल्पी नौकरी पेशा लोग भी हैं, वे थोड़ी संख्या में प्रायः संसार के हर देश में पाए जाते हैं। 4. जो हजारों वर्ष पूर्व भारत से आए थे या उसी देश में से भारतीय संस्कृति में दीक्षित हुए थे, ऐसे लोग अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और वाली द्वीप में रहते थे। विदेशी लेखकों ने विदेश गमन करने वाले भारतीयों पर जो केवल धन कमाने के लिए वहां जाने का अपेक्ष किया है, वह चिर अतीत के प्रवासियों पर लागू नहीं होता।
हजारों वर्ष से भारतीय प्रतिभाएं विश्व के कोने कोने में जाती रही हैं, उनका एकमात्र प्रयोजन वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता के अनुसार सर्वत्र कल्याणकारी परिस्थितियों, प्रगति एवं समृद्धि का अभिवर्धन ही था।
विदेशों में भारतीयता प्रेमी संगठन। विदेशों में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो भारतीयों और विदेशियों के बीच स्नेह सौहार्द पैदा करने और पाश्चात्य संस्कृतियों एवं वर्गों को एक दूसरे को समझने निकट लाने के लिए पथ प्रशस्त करती रहती हैं। भारतीय धर्मों को विदेशों में लोकप्रिय बनाने एवं प्रवासी बंधुओं को अपनी परंपराएं समझते रहने की दिशा में जागरूक बनाती रही हैं। भारतीय धर्म अनेक धाराओं में प्रवाहित होता है। इन सभी संप्रदायों के प्रचारकर्ता उन देशों में पहुंचते हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार प्रचार संगठन और प्रयत्न करते रहे हैं। उनके प्रभाव से कितने ही संगठन विदेशों में बने और फले फूले हैं। कितनी ही संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रवासी भारतीयों द्वारा अथवा उन देशों के अन्य निवासियों द्वारा स्थापित की गई हैं।
इनका उद्देश्य भी यही रहा है कि भारतीय तत्वदर्शन का प्रकाश उन देशों तक पहुंचे और उस देश की जनता भी उस कल्याणकारी चिंतन के समीप आकर अधिक लाभान्वित हो सके।
अन्य देशों में चलते रहे एवं चल रहे कुछ संगठनों के नाम इस प्रकार हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस नामक संगठन ने विदेशों में भारतीय प्रवासियों के समुदाय की सांस्कृतिक मांगों की पूर्ति करने एवं भारतीय संस्कृति में रुचि लेने वाले विदेशियों को प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हाथ में ली हैं। उन्होंने भारत के बारे में विदेशों में उच्च विचारधारा बनाने के लिए कई केंद्रों की स्थापना की है।
द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल स्टडीज फिजी, ईरान, लाओस, सिंगापुर, ट्रिनिडाड, रोमानिया, युगोस्लाविया आदि में स्थित है।
पोलैंड में भी यह संस्था काम कर रही है। इंडियन स्टडीज के 3 केंद्र इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और लेबनन में स्थापित किए गए हैं।
ये संगठन धार्मिक एवं सांस्कृतिक हैं।
इस शताब्दी के प्रारंभ में जो संगठन सक्रिय थे उनमें से जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं वे निम्नलिखित हैं।
भूतकाल में द इंडिया सोसाइटी ऑफ अमेरिका, द यूनियन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया अकेडमी ऑफ अमेरिका, ऑल वर्ल्ड गांधी फेलोशिप, द गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। वर्तमान में USA, द फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन एंड द कल्चरल इंटीग्रेशन फेलोशिप ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ऑस्ट्रेलिया, द इंडो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटीज 8 मेलबोर्न, सिडनी, कैनबेरा, एडिलाइड व पर्थ। वर्मा, द सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज, ऑल वर्मा हिंदू सेंट्रल बोर्ड एंड सिख एंड जैन एसोसिएशंस, द इंडियन म्यूजिक एंड आर्ट सोसाइटी। सीलोन, द सीलोन इंडियन कांग्रेस। मलेशिया, इंडियन एसोसिएशन स्ट्रेट सेटलमेंट्स, द नेगरी सैम्बिलन इंडियन एसोसिएशन, द कोस्टल इंडियन एसोसिएशन लांग, द इंडियन मर्चेंट्स चेंबर, द चेटिया नक्टकोटी चेंबर ऑफ कॉमर्स, जापान इंडियन क्लब, द इंडियन सोशल क्लब, द इंडियन लेडीज क्लब ये कोबे में स्थित हैं। द याकोहामा सिल्क मर्चेंट्स एसोसिएशन, द इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, द पारसी क्लब,
जापान इंडिया सोसाइटी टोक्यो व कोवे में है।
बार्सिलोना व मैड्रिड, द फ्रांस ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जेकोस्लोवाकिया व पोलैंड, द जेक इंडिया सोसाइटी प्रेग, द इंडो पोलिश फ्रेंडशिप सोसाइटी, डेनमार्क द डेनिश इंडियन सोसाइटी कोपेनहेगन, पेरिस एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स USSR, द इंडियन स्कॉलर्स एसोसिएशन मॉस्को लेनिनग्राद व कीव, UAR, इंडो UAR, फ्रेंडशिप सोसाइटी युगांडा, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन एसोसिएशन इंडसुडानीज फ्रेंडशिप एसोसिएशन खार्तुम, नाटाल कॉलोनियल बॉन्ड सेटलर्स इंडियन एसोसिएशन नाटाल, इंडियन टीचर्स सोसाइटी हिंदू तमिल इंस्टीट्यूट, इंडो यूरोपियन काउंसिल UKYMCA, इंडियन स्टूडेंट्स हॉस्टल्स रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट लंदन, फिजी गांधी सोसाइटी सूबा, ब्रिटिश गायना ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ईस्ट इंडियन लेडीज गिल्ड मुस्लिम लाइब्रेरी एसोसिएशन महामंडल सभा, सूरीनाम माता गौरी ट्रस्ट, मॉरिशस इंडियन फ्रेंडशिप सोसाइटी पोर्ट लुइस, फिलीपाइंस फिलीपाइंस इंडिया सोसाइटी मलाया, ट्रिनिडाड एंड टोबेगो ईस्ट इंडियन लिटरेरी लीग पोर्ट ऑफ स्पेन, ईस्टर्न इंडियन लिटरेरी एंड डिबेटिंग क्लब ट्रिनिडाड, ईस्ट इंडियन लिटरेरी लीग यंग मेन्स मुस्लिम एसोसिएशन, जमैका ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, डेमास्कस दमिश्क इंडो सीरियन क्लब, तेहरान इंडो ईरान कल्चरल एसोसिएशन, इस्तंबुल व अंकारा इंडो टर्किश कल्चरल एसोसिएशन, कैलिफोर्निया अमरीका की दो संस्थाएं।
एक एशियन स्टडीज के लिए कैलिफोर्निया की यही एकमात्र संस्था है
जो एम ए पी एच डी
के लिए पूर्व पश्चिम के तुलनात्मक अध्ययन एवं एशियन संस्कृति के अन्वेषण के लिए अधिकृत है।
टू यही एक ग्रेजुएट स्कूल है जहां प्रसिद्ध एशियाई विद्वान एशियाई भाषा में पढ़ाते हैं तथा अपनी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत दर्शन शास्त्र, धर्म, समाज विज्ञान, व्यक्तित्व शास्त्र, आत्मा साक्षात्कार हेतु मनोभौतिक नियमों की व्याख्या स्वाभाविक रूप से करते हैं। डिस्पेंसरीज व कल्याणकारी समितियां, नाटाल बालजी हिरजी खोजा फ्री डिस्पेंसरी, इंडियन मेटर्निटी होम, सोशल सर्विस लीग, फ्री डिस्पेंसरी ऑफ मुंबासा, इंडियन मेटर्निटी होम नैरोबी, सूरत हिंदू एसोसिएशन, इंडियन सोशल सर्विस कमेटी, आर्यन बेनीबोलेंट होम, इंडियन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, मंदिर एवं पूजा स्थल हिंदू धर्म सभा, हिंदू सभा, आर्य समाज सैगोन, जैन मंदिर, सिख गुरुद्वारा खोजा खाना, आर्य समाज मंदिर, जामिया मस्जिद, हिंदू यूनियन टेम्पल, सनातन धर्म सभा मंदिर नैरोबी, खालसा दीवान सोसाइटी या फ्री डिवाइन कम्युनियन ब्रिटिश कोलंबिया में 1907 में वैंकूवर में स्थापित किया गया, उसी अवधि में पैसिफिक कोस्ट खालसा दीवान सोसाइटी भी स्थापित हुई। भारतीय संस्थाओं द्वारा प्रचार कार्य, रामकृष्ण मिशन के केंद्र, अस्पताल, पुस्तकालय, सत्संग भवन, स्कूल आदि अमेरिका के कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, बर्कले, सेक्रेमेंटो, न्यूयॉर्क, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स आदि स्थानों में चलते हैं। लंदन, पेरिस, जिनेवा, कोलंबो, फिजी, मॉरिशस एवं जापान में भी उनके केंद्र व आश्रम हैं। आर्य समाज की शाखाएं श्रीलंका, अफ्रीका, गायना, ट्रिनिडाड, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा आदि में हैं। महाबोधि सोसाइटी ने बौद्ध धर्म का प्रसार कार्य पिछले 15 वर्षों से बड़े उत्साहपूर्वक किया है।
जापान, रूस, कोरिया, मंगोलिया, मलेशिया, वर्मा आदि देशों में बौद्ध धर्म के लोगों से संबंध बनाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना इसका प्रधान कार्य रहा है।
अरविंद सोसाइटी की शाखाएं ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जापान, केनिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, पश्चिमी जर्मनी, मलेशिया, जाम्बिया में हैं।
हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन भी कितने ही देशों में लोकप्रिय होने लगा है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवासी भारतीयों के कितनी ही जगह संगठन हैं। श्री महेश योगी, बालायोगेश्वर, संत कृपाल सिंह के द्वारा कई देशों में योग प्रसार के केंद्र एवं संगठन बन गए हैं। युग निर्माण शाखाएं प्रायः उन सभी देशों में हैं जिनमें प्रवासी भारतीय रहते हैं। जहां प्रवासी भारतीय नहीं हैं, वहां भी उनकी स्थापना के लिए प्रयत्न चल रहे हैं।
प्रवासी भारतीयों संबंधी कुछ उपलब्ध जानकारियां।
समुद्र पार के देशों में लगभग 50 लाख और भारत की सीमाओं से लगे हुए नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लंका में 2.5 करोड़, इस प्रकार भारत मूल के लगभग 3 करोड़ भारतीय अपने देश से बाहर रह रहे हैं।
वे लगभग 125 देशों में फैले हुए हैं।
इन प्रवासी भारतीयों की स्थिति का विधिवत सर्वेक्षण करने के लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। इन देशों में आने जाने वालों द्वारा अथवा पत्र व्यवहार से जो सूचना मिलती है, उन्हीं के आधार पर यह पता चलता है कि प्रवासियों की स्थिति क्या है, उनकी सही जनसंख्या क्या है।
इसका भी प्रामाणिक विवरण प्राप्त नहीं है।
यहाँ बैठे हुए उपलब्ध जानकारियों के आधार पर जो पता चलता है, उसी के अनुमानित आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना पड़ता है। कई बार